ये आकाशवाणी है, प्रस्तुत है कार्यक्रम सुर्खियों में। इसके अंतर्गत सुनिए राष्ट्रीय अभिलेखागार के महानिदेशक अरुण सिंघल के साथ आकाशवाणी संवाददाता दीक्षा सक्सेना की विशेष बातचीत।
राष्ट्रीय अभिलेखागार अपने साथ एक बहुत ही महत्वपूर्ण विरासत को आगे बढ़ा रहा है। राष्ट्रीय अभिलेखागार का निर्माण सन 1891 में कलकत्ता में इम्पीरियल रिकॉर्ड विभाग के रूप में किया गया था। ये देश का प्राथमिक अभिलेख भंडार है। सन 1911 में इसे देश की राजधानी दिल्ली लाया गया। आज हमारे साथ राष्ट्रीय अभिलेखागार के महानिदेशक एक विस्तृत चर्चा के लिए स्टूडियो में मौजूद हैं। आइए उनके साथ इस चर्चा को आगे बढ़ाते हैं। सर, आपका स्वागत है।
थैंक यू वेरी मच। सभी श्रोताओं को मेरा नमस्कार।
सर, सबसे पहले मैं आपसे ये समझना चाहूंगी कि आर्काइवल कंजर्वेशन कैसे किया जाता है और के लिए इसका कितना महत्व है, और साथ ही मेरा एक ये सवाल भी है कि मटेरियल्स के प्रिजर्वेशन में क्या टेक्निक यूज की जाती है।
जी, बड़ा महत्वपूर्ण सवाल है। जो हमारे पास डॉक्यूमेंट्स हैं, लगभग 1500 साल पुराने भी हमारे पास रिकॉर्ड्स हैं, और जब पेपर्स पुराने हो जाते हैं तो आपने देखा होगा वो पीले पड़ जाते हैं, ब्रिटल हो जाते हैं, टूटने लगते हैं। ऐसे में उनका कंजर्वेशन करने की जरूरत पड़ती है। आर्काइवल कंजर्वेशन जो होता है, उसमें जो सामान्यतः आप लेमिनेशन देखते हैं बाजार में कि प्लास्टिक में लेमिनेशन कर दिया जाता है, वो आर्काइवल डॉक्यूमेंट्स में नहीं किया जाता है, क्योंकि उसके बाद वो डॉक्यूमेंट कभी रिकवर नहीं हो सकता है। तो आर्काइवल लेमिनेशन अलग टाइप का होता है, जिसमें हम टिश्यू पेपर लेके कुछ ऑर्गेनिक मटेरियल्स यूज करते हैं, जिसमें पेस्ट कर लेते हैं। तो हर शीट को हम लोग डीएसिडिफिकेशन करते हैं, जो एसिड आ गया कागज में, डीएसिडिफिकेशन उसके लिए करते हैं। उसके बाद फिर उसको टिश्यू पेपर में लेमिनेट करके प्रिजर्व करते हैं। ये स्टैंडर्ड मेथड होता है। छोटी मोटी रिपेयर है तो कहीं टिश्यू पेपर का छोटा टुकड़ा लग जाएगा, लेकिन अगर पूरा डॉक्यूमेंट ही रिपेयर करने की जरूरत है तो ऐसे उसको कंजर्व करते हैं। तो ये बड़ा समय लेने वाला, मैन्युअली करने वाला प्रोसेस है। ये कागज जब हम प्रिजर्व कर लेते हैं, या कोई कागज ठीक है, हेल्दी है, उसको प्रिजर्व नहीं भी किया, तो इन सब कागजों को हम लोग फ्यूमिगेशन करके, टेम्परेचर और ह्यूमिडिटी कंट्रोल करके ऐसे एनवायरमेंट में रखते हैं कि ये खराब ना हो। मतलब यहां तक कि आप देखेंगे, अगर आप कभी नेशनल आर्काइव्स आएंगे तो हमारी दो बिल्डिंग्स हैं, एक हेरिटेज बिल्डिंग है पुरानी और एक एनेक्सी है। तो कोई कागज अगर एक बिल्डिंग से दूसरी बिल्डिंग में जाना हो तो उसको धूप में से और खुले एटमॉस्फेयर को एक्सपोज करके नहीं ले जा सकते। एक अंदर ही अंदर पूरी चैनल बनी हुई है जिसमें एयर कंडीशनिंग रहती है, उसमें जाता है कागज, ताकि तेज लाइट ना लगे, उसको हवा ना लगे। बहुत एहतियात से हर कागज को रखा जाता है। तो ये सब कागज हम लोग रखते हैं, लेकिन कागज जो हम रखे हैं, जो हमारे धरोहर है, इतिहास है हमारा, उसको अगर हम रखे रहे, किसी को दिखाएं ना, तो बेकार है। हम रखे तो इसीलिए हैं कि लोग देख पाएं। तो हमारा प्राइमरी ऑब्जेक्टिव है कि सब लोग बड़ी आसानी से इन कागजों को देख पाएं। अब चूंकि फिजिकल कागज देखने में समस्या है, लोग आएंगे, देखेंगे, उसको हैंडल करेंगे, उस पर अंगूठा लगाएंगे अपना, तो कागज खराब होता है। तो हमारी बहुत बड़ी मुहिम रहती है कि हम इन कागजों को सारों को डिजिटाइज कर दें, और डिजिटाइज करके हमारा एक पोर्टल है, अभिलेख पटल, उस पर ये कागज आ जाएं। ये प्रोसेस हम चला रहे हैं, और अभी हमारा जो कलेक्शन है, लगभग 70 लाख डॉक्यूमेंट्स हमारे पास हैं, जो 1500 साल तक पुराने हैं। आप कभी आएंगे तो पाएंगे कि मुगल डायनेस्टी के नूरजहां के फरमान, झांसी की रानी के लेटर्स, तुगलक डायनेस्टी के पेपर्स, ब्रिटिश रिकॉर्ड्स बहुत सारे, ईस्ट इंडिया कंपनी के सारे, और आजादी के बाद के भी कागज हैं। तो ये सारे कागज 70 लाख के करीब हैं, जो 34 करोड़ पेजेस होते हैं। 34 करोड़ पेजेस में से अभी हमने करीब 4-4.5 करोड़ पेजेस डिजिटाइज कर लिए हैं, जिनको अभिलेख पटल पर डाल रहे हैं। 30 करोड़ बचे हैं। तो अब हम लोग बहुत तेजी से एक कार्यक्रम चला के उनको डिजिटाइज करने जा रहे हैं। हम लोगों ने बहुत तेजी से इस काम को करने की सोची है। आज जैसे हम लोग बात कर रहे हैं तो लगभग 6 लाख पेज रोज डिजिटाइज हो रहे हैं। इसके लिए तीनों शिफ्ट में काम होता है, दिन रात काम चल रहा है, बहुत सारी बड़ी टीम लगी हुई है, वो काम कर रही है, और हम होपफुली 2 साल के अंदर ये काम पूरा कर लेंगे। फिर जितना भी कलेक्शन हमारे पास है, वो सबका सब अभिलेख पटल पर उपलब्ध रहेगा, और जिनको कोई भी कागज देखना हो, वो घर बैठे बड़े आसानी से अपने ऑफिस में, अपने घर से सारे कागज देख सकेंगे।
सर, आपने अभी बताया कि काफी मैन पावर लगती है, तो मेरा सवाल आपसे यही है कि हाल ही में ये घोषणा की गई थी कि 1000 लोगों को कौशल विकास योजना के तहत आर्काइवल कंजर्वेटर प्रोग्राम या पुरलेख संरक्षण कार्यक्रम के तहत स्किल किया जाएगा या विकसित किया जाएगा। इस कदम की क्या अहमियत है, और इससे देश के रिकॉर्ड्स को बचाने में और उन्हें जन जन तक पहुंचाने में कैसे मदद मिलेगी?
देखिए, जब हम लोगों ने सोचा कि हम 2 साल में सारे रिकॉर्ड्स को डिजिटाइज कर देंगे, जो हमारा डिजिटाइजेशन का प्रोसेस था, करीब हम 1.5 करोड़ पेजेस पर ईयर डिजिटाइज कर रहे थे, और हमारे पास बचे थे 30 करोड़ पेज, तो 20 साल लगने थे। ये हुआ कि ये तो एक्सेप्टेबल टाइम फ्रेम नहीं है, इससे जल्दी करके दिखाना चाहिए। जो सबसे ज्यादा पेजेस डिजिटाइज हुए हैं दुनिया भर किस किसी आर्काइव में, वो अमेरिका के आर्काइव्स में हुए हैं। उन्होंने लगभग 10 करोड़ पेज डिजिटाइज किए हैं। हमारे पास अभी 4-4.5 करोड़ पेज डिजिटाइज हुए हैं। तो ये हुआ कि हमको 2 साल में पूरा करना है, बहुत तेजी से हम करेंगे। तो हम 6 लाख पेज रोज या 1.25 करोड़ पेज पर मंथ के हिसाब से करेंगे, और आप पाएंगे कि 1 साल के अंदर ही दुनिया में सबसे आगे हम लोग हो जाएंगे जो नंबर ऑफ पेजेस डिजिटाइज उसके टर्म्स में। लेकिन इसको करने में समस्या आई कि बहुत सारे कागज ऐसे हैं जो बड़ी खराब हालत में हैं, और जो पेपर ब्रिटल हो गया है वो स्कैन नहीं हो सकता, स्कैनर के पास आपको ले जाना पड़ता है पेपर को। अगर पेपर इतनी खराब हालत में है कि स्कैनर पे ले जाते ही टूट जाएगा, टुकड़े हो जाएंगे उसके, तो उसको आप स्कैन करने से पहले रिपेयर करना जरूरी हो जाता है। एक अनुमान हमने लगाया कि 30 करोड़ पेज में से करीब 15% पेजेस ऐसे हैं जो बहुत खराब हालत में हैं, तो मतलब 4.5 करोड़ पेजेस हो गए, और एक शीट पे 2 पेजेस होते हैं आगे पीछे, 2.25 करोड़ शीट्स हो गई। तो हमारे आर्काइव्स में 50 आदमी थे जो लगे हुए थे कंजर्वेशन के काम में, और ये सब मिलके हर साल करीब 6 लाख शीट्स को रिपेयर कर लेते थे। तो 6 लाख शीट्स अगर आप करेंगे और 2.25 करोड़ शीट्स आपको करनी है रिपेयर, तो इसमें 38 साल का समय लगेगा। बट हम लोग तो ये ठाने हुए हैं कि 2 साल में सारा डिजिटाइज कर लेना है, तो देयरफॉर इस काम को भी हम 20 गुनी स्पीड पे करने पे आए। तो ये हुआ कि 50 आदमी के बजाय हमको 1000 आदमी चाहिए जो कंजर्वेशन का काम करें। अब इतनी जगह हमारी बिल्डिंग में नहीं, हेरिटेज बिल्डिंग है, और ये एज अ मैटर ऑफ पॉलिसी कभी हमारे कागज जो हैं वो हम अभिलेखागार से बाहर नहीं भेजते हैं, उनको अपने अंदर ही रखते हैं अभिलेखागार में। तो जो भी ये कंजर्वेशन का काम करना था इसको अभिलेखागार के अंदर ही करना था। तो स्पेस कंस्ट्रेंट बहुत है, और ना हम कोई होलसेल कंस्ट्रक्शन कर सकते हैं हेरिटेज बिल्डिंग होने के नाते। तो एक सोल्यूशन ये निकला कि चलिए 2 शिफ्ट में काम किया जाए, तो 1 शिफ्ट में 1000 के बजाय 500 आदमी बैठाने पड़ेंगे। फिर भी 1000 आदमी तो चाहिए, ऐसे इतनी मात्रा में आदमी उपलब्ध ही नहीं थे। तो हमारे एक स्कूल ऑफ आर्काइवल स्टडीज है जो हमारी संस्था का हिस्सा है, स्कूल ऑफ आर्काइवल स्टडीज में एक हमने ट्रेनिंग कोर्स डिजाइन किया, हैंड्स ऑन ट्रेनिंग कोर्स है, 14 दिन 2 हफ्ते ड्यूरेशन का, और कोई भी 12वीं पास बच्चा उस कोर्स को कर सकता है, 12th की क्वालिफिकेशन रखी गई है। ये 2 हफ्ते का कोर्स करने के बाद वो रिपेयर का काम सीख जाएंगे, रिपेयर का काम कर सकते हैं। तो हमें 1000 आदमियों की ऐसी जरूरत है, जरूरत ये थी कि जल्दी जल्दी ट्रेन करके निकालें, हमारे स्कूल की लिमिटेड कैपेसिटी है। तो हम लोगों ने मिनिस्ट्री ऑफ स्किल्स को अप्रोच किया, और बड़ा अच्छा कोलैबोरेशन दोनों संस्थाओं के बीच में हुआ। उनके माध्यम से हमारे कई सारे सेंटर्स हैं देश में, तो सब जगह ट्रेनिंग करने की जरूरत थी। तो अब हम एक बैच में लगभग 200 स्टूडेंट्स को ट्रेन करते हैं, एक बैच निकल गया, अगला बैच अब शुरू हो रहा है। इस तरह से करके हम 1000 लोगों को ट्रेन कर लेंगे, और आगे भी जो जरूरत पड़ेगी ट्रेन करते रहेंगे। तो बड़ा अच्छा एक विन विन सिचुएशन हो गई कि हम बच्चों को केवल 2 हफ्ते की ट्रेनिंग देके 2 साल के लिए उनको गेनफुली एम्प्लॉयड करा देंगे, और अच्छा खासा पैसा, मतलब 15,000 से 20,000 रूपये महीना के बीच में उनको मिल जाएगा। तो जो यूथ इंटरेस्टेड है वो इस काम को कर सकते हैं। तो जहां उनकी स्किल्स डेवलपमेंट मिनिस्ट्री के ऑब्जेक्टिव हैं कि हम स्किलिंग करेंगे, वहां हमारी रिक्वायरमेंट थी। तो बड़ा अच्छा समागम हो गया दोनों का, बहुत अच्छा कोऑर्डिनेशन हो गया, इस कार्यक्रम को हम लोग आगे बढ़ा रहे हैं।
सर, जैसे कि अभी इसी चर्चा को आगे बढ़ाते हुए आप खुद ही कह रहे हैं कि हमारी राष्ट्रीय धरोहर है, हमारी राष्ट्रीय धरोहर को और लोगों तक फैलाने में आपने डिजिटाइजेशन का एक बहुत अहम रूप बताया है, तो उसी सहारे डिजिटाइजेशन आपको किस तरीके से आगे इस धरोहर को ले जाने में मदद?
देखिए, ट्रेडिशनल जो हमारा तरीका था, हमारे एक रिसर्च रूम है, तो जो रिसर्च स्कॉलर्स हैं वो आते थे, और उनको पर्सनली सब हमारा स्टाफ वहां पे हेल्प करता है लोकेट करने में रिकॉर्ड्स को। जो 70 लाख रिकॉर्ड्स मैंने आपको बताए, उनके जो इंडेक्स रजिस्टर बने हुए हैं, जो लिस्ट है उन कागजों की, वो लिस्ट ही 4.75 लाख पेजेस की है, इतनी लंबी तो लिस्टें हुई। तो ये सारी लिस्टें आके स्कॉलर्स देखा करते थे रिसर्च रूम में, लिस्ट में से छांटते थे डॉक्यूमेंट्स, फिर डॉक्यूमेंट्स उनको उपलब्ध कराए जाते थे। एक लिमिटेड कैपेसिटी है इस काम को करने की, कम लोग आ पाएंगे, कम लोग देख पाएंगे। तो इसको जन सामान्य तक ले जाने का जो एक ही तरीका है कि डिजिटाइज हम करें। तो हमारा एक अभिलेख पटल है जिसपे कोई भी नागरिक जाके फ्री ऑफ कॉस्ट, बिना किसी रजिस्ट्रेशन के, सर्च बार में अपना विषय टाइप कर दें, तो जितने हमारे पास रिकॉर्ड्स हैं उस टॉपिक से मिलते जुलते उन सबकी लिस्ट आ जाती है। अगर उन कागजों को देखना हो तो एक रजिस्ट्रेशन करना पड़ता है जिसके लिए कोई चार्जेस नहीं है, रजिस्ट्रेशन करके लॉग इन करके उन कागजों को फिर देखा जा सकता है। यहां तक तो बिल्कुल फ्री ऑफ कॉस्ट है और आप कहीं से भी कर सकते हैं। अगर डाउनलोड करना चाहें उसके लिए बड़े नॉमिनल चार्जेस हैं। सो अभिलेख पटल हमारी मेन स्ट्रेटजी है इन कागजों को लोगों को उपलब्ध कराने की। तो पहली प्रायोरिटी, जैसा मैंने कहा कि अभी उसमें करीब 4.5 करोड़ पेज हमारे डिजिटाइज हुए हैं, जब तक डिजिटाइज होते नहीं तब तक हम उनको डाल नहीं सकते अभिलेख पटल पे। तो बड़ा तेज अभियान चला के 2 साल में हम सारे कागजों को डिजिटाइज कर देंगे, हमारा पूरा कलेक्शन अभिलेख पटल पे आ जाएगा। एक चीज ये है, उसके आगे अभिलेख पटल में इम्प्रूवमेंट्स हैं, हम आगे जो वर्जन्स लाएंगे उनमें आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस यूज करके सर्च एल्गोरिदम्स को बेटर करेंगे, लोगों को बहुत सारी सुविधाएं देंगे ताकि एक प्रेजेंट एक्सपीरियंस उनको अभिलेख पटल पे जाके हो सके। ये हमारा मेन माध्यम रहेगा। इसके अलावा हम लोग एग्जीबिशंस करते हैं, उनके माध्यम से स्कूल के बच्चों को बाकी सिटीजन्स को हमारे कागज दिखाते हैं, क्यूरेटेड कलेक्शंस दिखाते हैं। अभी हमने योजना बनाई है एक मोबाइल एग्जीबिशन लॉन्च करने की, जो घूम घूम के जगह जगह पे अपनी सारे अभिलेख दिखाएंगे। और एक हम अब नया शुरू करने जा रहे हैं, डिजिटल एग्जीबिशन का कॉन्सेप्ट ले आए हम लोग, एक हमने डिजिटल एग्जीबिशन कर दी। ये डिजिटल एग्जीबिशन कोई भी डाउनलोड करके उसमें ब्राउज कर सकते हैं, घूम फिर के अंदर आपको ऐसी फीलिंग आएगी जैसे आप जा रहे हैं किसी एग्जीबिशन में, कोई भी कागज को क्लिक करके आप देख सकते हैं।
मेरा अगला सवाल आपसे, मैपिंग ऑफ द आर्काइव्स इन इंडिया को एक इंसाइक्लोपीडिया या विश्वकोश भी माना जा रहा है
जी,
इस किताब के बारे में कृपया हमारे श्रोताओं को थोड़ा बताएं।
बहुत अच्छा प्रयास है, रिसर्च करके निकाला गया है, उन्होंने कई सारे आर्काइव्स का कंपाइलेशन किया है। उस किताब से बल्कि हम लोगों को एक आइडिया आया कि हम नेशनल आर्काइव्स ऑफ इंडिया हैं, हर स्टेट में भी आर्काइव्स होते हैं, राज्यों में भी आर्काइव्स होते हैं। तो एक कमेटी बनी हुई जिसको नेशनल कमेटी ऑफ आर्काइविस्ट्स कहते हैं, उसमें सारे स्टेट्स और सेंटर के आर्काइव जो है वो मेंबर्स होते हैं। उसकी मीटिंग्स हम लोगों ने करनी शुरू करी, 10-12 साल से हुई नहीं थी मीटिंग, दोबारा शुरू करी और पाया कि सब उन्हीं तरह की समस्याओं से उलझ रहे हैं, सबकी वैसी ही समस्याएं हैं, सबके वैसे ही सॉल्यूशंस हैं, सबकी गुड प्रैक्टिसेस एक दूसरे के लिए यूजफुल हैं। तो जब ये किताब मैंने पढ़ी तो मुझे दिमाग में आया कि बाकी भी तो आर्काइव्स हैं, स्टेट आर्काइव्स और नेशनल आर्काइव्स को छोड़ के, तो हम लोगों ने इसको और आगे बढ़ाया प्रयास को और लगभग 425 आर्काइव्स हमने आइडेंटिफाई करे, प्राइवेट और पब्लिक मिला के। और फिर हमने एक आर्काइव्स इन इंडिया ऑनलाइन करके संस्था गठित करी है। उसका उद्देश्य यह है कि जितने भी आर्काइव्स हैं, मान लीजिए कोई प्राइवेट आर्काइव है, उन्होंने कोई बहुत अच्छा काम किया आर्काइविंग में, तो वो अपना बेस्ट प्रैक्टिसेस के तौर पर उसको प्रेजेंट कर सकते हैं, सब लोग सीख सकते हैं उनसे, या अगर हमने कोई अच्छा काम किया तो हमसे लोग सीख सकते हैं, या स्टैंडर्ड सेट करने की बात है। जैसे आइडियली हम ये चाहेंगे कि जितने आर्काइव्स हैं, 425 आर्काइव्स हैं, जब आप कोई सर्च करते हैं जाके किसी विषय पे, तो सारे 425 आर्काइव्स के रिजल्ट्स थ्रो अप हो जाने चाहिए। अगर मान लीजिए कोई रजा लाइब्रेरी में कागज है वो भी दिख जाना चाहिए, एएमयू में कोई कागज है वो भी दिख जाना चाहिए, बीएचयू में कोई है वो भी दिख जाना चाहिए, सारे दिख जाने चाहिए। इसके लिए आपको सबका मेटा डेटा स्टैंडर्डाइज करना पड़ेगा, कॉमन सर्च के प्रावधान करने पड़ेंगे, एक से कुछ सारे सॉफ्टवेयर जो है उनको आपस में बात करनी पड़ेगी, कुछ स्टैंडर्डाइजेशन की जरूरत पड़ेगी। तो एआईओ में जो पहली मीटिंग हम लोगों ने करी, अच्छा रिस्पॉन्स आया, ये भी चर्चा हुई कि हम कुछ स्टैंडर्ड्स ऐसे डिजाइन करें कि कॉमन सर्च हो सके, आपने एक जगह सर्च किया सबके रिजल्ट दिखाई दे जाए, कितना अच्छा होगा, नागरिक के लिए कितनी सुविधा होगी। तो इस तरह की चीजों पर हम लोगों ने अब सोचना शुरू किया है, इस किताब से ये फायदा हुआ।
सर, मेरा आखिरी सवाल इस चर्चा में आपसे सिर्फ यही है कि इसी साल भारत ने ओमान के साथ 70 आर्काइवल डॉक्यूमेंट्स 1793 से 1993 तक के शेयर किए, इसे एक रेयर जेस्चर भी माना जा रहा है, ऐसा क्यों किया गया और भी देशों के साथ क्या आपका ऐसा करने की योजना है?
जी बिल्कुल, सभी देशों में आर्काइव्स होते हैं और एक दूसरे के इंटरेस्ट के आर्काइव्स होते हैं। जैसे जब ब्रिटिश शासन था उस समय इंडिया से बहुत सारे देशों का कामकाज होता था, तो हमारे पास फाइलें हैं पूरे अरब देशों की, बहुत सारे और देशों की फाइलें ऐसी हैं जो कुछ फैसले यहां लिए गए उन पर लागू होते थे। तो बाकी लोगों के इंटरेस्ट के बहुत सारे डॉक्यूमेंट्स हमारे पास हैं, इसी तरह से हमारे इंटरेस्ट के कुछ डॉक्यूमेंट्स दूसरी जगह निकल आते हैं। अभी उदाहरण के लिए जो हमारे जो प्राग में एम्बेसडर हैं उन्होंने बताया कि कुछ सुभाष चंद्र बोस के मुतालिक डॉक्यूमेंट्स चेक आर्काइव्स में हैं और उनकी कॉपी उन्होंने हासिल करी, अब उनको शेयर करने के लिए उनको हम लेने के लिए प्रयास कर रहे हैं। तो कई सारे देशों से ऐसी बातचीत चलती रहती है कि जो डॉक्यूमेंट्स हमारे पास उनके इंटरेस्ट के हैं और उनके पास जो हमारे इंटरेस्ट के डॉक्यूमेंट्स हैं उनको शेयर किया जाए और आर्काइव्स के बीच में कोऑपरेशन के लिए एग्रीमेंट साइन होते हैं। इसी सिलसिले में हम लोग ओमान गए थे और वहां बातचीत हुई उनके आर्काइव्स के अधिकारियों से। तो जब गए थे तो ये बात आई कि बहुत सारे नागरिक ऐसे हैं जो 250 साल से परिवार रह रहे हैं ओमान में, इंडियन ओरिजिन के परिवार हैं, और चूंकि 250 साल से वहां उनके कई जनरेशन हो गए तो उनकी फैमिली में बहुत सारे डॉक्यूमेंट्स हैं जिनमें पुराने रिकॉर्ड्स हैं कि कैसे ट्रेड शुरू हुआ, उस समय कैसा लगता था मस्कट में किसी जगह खड़े होकर फोटो पुराना लिया हुआ उन्होंने, उनके पुराने पासपोर्ट्स हैं, कैसे दोनों देशों के बीच में संबंध बने और बढ़े, इसके बड़े अच्छे दस्तावेज उनके पास हैं। तो ये धरोहर हैं, दोनों देशों के धरोहर हैं, तो इनको हम स्कैन कर लेते हैं, अपने आर्काइव्स के कलेक्शन में शामिल कर लेंगे। तो ये इनिशिएटिव हुआ, एक हमने टीम भेजी कि 70 तो हमने डॉक्यूमेंट्स दिए थे, लेकिन फिर वहां के करीब 30 जो मानिंद फैमिलीज हैं उन्होंने अपने रिकॉर्ड्स दिए, वो सारे स्कैन हो गए, नेशनल आर्काइव्स में आ रहे हैं।
अपना समय देने के लिए आकाशवाणी को आपका बहुत बहुत धन्यवाद।
बहुत बहुत धन्यवाद।
अभी आप सुन रहे थे राष्ट्रीय अभिलेखागार के महानिदेशक अरुण सिंघल के साथ आकाशवाणी संवाददाता दीक्षा सक्सेना की विशेष बातचीत। ये कार्यक्रम आकाशवाणी के समाचार सेवा प्रभाग द्वारा प्रस्तुत किया गया। इसे आप हमारे मोबाइल ऐप न्यूज ऑन एआईआर और यूट्यूब चैनल न्यूज ऑन एआईआर ऑफिशियल पर भी सुन सकते हैं। इस कार्यक्रम के संबंध में अपनी प्रतिक्रिया आप हमें ईमेल या व्हाट्सएप के माध्यम से भेज सकते हैं। ईमेल का पता है airnsttalks@gmail.com और व्हाट्सएप नंबर है 9289094044।